समीश्राणां ब्रह्म महिष्टं त्वं देवतानां ब्रह्म च देवतम् पतिं पतिनां ब्रह्म परस्ताद् विदां देवं भुवनेश्वरीयम्। इस शरीर में अपने स्वरूप के खोजने के लिए जो इस शरीर का अधिष्ट आता है, नियंता है, और इसके बाद या पहले भी हो सकता है जो इस सृष्टि का नियंता है, कोई भी हो, इस प्रत्यक्ष को देख करके अनुमान करना पड़ता है। ये बड़े बड़े विशाल पर्वत, ये ब्रह्मांड, ये सितारे आदि किसने बनाए हैं, पर जो बना बनाया हमें शरीर मिला है, जिसमें सदा अपनेपन की भावना बनी रहती है, मेरा शरीर है और इतना समीपवर्ती इसका संबंध है मेरे साथ या अपने साथ में कि और कोई संबंध नहीं, तो ये संबंध हमारे लिए सुख का हेतु भी बना हुआ और दुख का हेतु भी बना हुआ है। जब शरीर में कोई वेदना होती है तो हमें सहन फीलिंग सी होने लगती है, हड़पन सी होने लगती है, किसी अंग में कोई विकार होता है तो हमें उसका अभाव सा प्रतीत होने लगता है। तो इस प्रकार का जो ये तादात्म्य संबंध बना हुआ है, ये संबंध हमने तो बनाया नहीं, इसको भी कोई बनाने वाला होगा। माता पिता को कह देंगे, माता पिता ने संबंध हमारे तैयार किए थे, फिर उनके ऊपर भी बात आएगी कि उनके संबंध किसने, तो ये परंपरा चली जाती है सृष्टि के आदि में। अब उसके विषय में अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, आदि सृष्टि में किस प्रकार ये जहरी सृष्टि चली होगी, नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं, अनुमान है, प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, देखा होगा उस काल के व्यक्तियों ने, या जो हम तो कुछ ऐसा ही अनुभव करते हैं कि जैसे कीट पतंग आदि वर्षा काल में अपने आप उपज करके भूमि से निकल करके चलने लगते हैं, तो संभव है आदि सृष्टि में भी इसी प्रकार ये जीव बन गए होंगे, ये भी हमारा अनुमान है, कोई प्रत्यक्ष की बात नहीं। तो इस छोटे से शरीर में इतने बड़े ब्रह्मांड के विज्ञान का समा जाना कुछ असंभव सी बात है। ब्रह्मांड की बात जाने दो, ये जो हमारा पिंड है छोटा सा, हमें तो इसी के स्वरूप का, इसी के विज्ञान का, इसी की कमियों का, अनेक प्रकार की बीमारियों उनका ही पता नहीं। लाखों डॉक्टर लगे हुए हैं इसके अध्ययन में, शरीर के अध्ययन में, इसका पता नहीं पा सके तो इतने बड़े ब्रह्मांड का पता क्या चले। खैर, क्योंकि ये जिज्ञासा हमारे अंदर एक पैदा हुई है, तो जितना भी जान जाएंगे कहीं हमें जाकर जीवन में संतोष तो हो जाएगा, हो जाता है बहुत से व्यक्तियों को जीवन में जाकर संतोष हो जाता है, अपने लिए भी और इस विज्ञान आदि के लिए भी। दो प्रकार से संतोष होता है, एक पंजाबी में कहते हैं खट्टा थू, कोई चीज प्राप्त नहीं हुई, अच्छी नहीं, इसको थू कर दिया, चलो इस प्रकार भी छोड़ना हो जाता है, अलग हो जाता है, एक विवश होकर के भी छोड़ा जाता है। तो ये देखा गया है कि संसार में जितने प्राणी भी जाते हैं सब विवश से होकर के जाते हैं, इच्छा पूर्वक शायद कोई जाना पसंद नहीं करता होगा, कहाँ जाना है इसका भी कोई पता नहीं है। दो प्रकार की शक्तियों का वर्णन करते हैं शरीर में, रई च प्राणम च, रई और प्राण। रई का अर्थ है तेज और प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति। तो ये दो शक्ति जो हैं, ये हमारे प्रत्यक्ष से रूप में देखने में आती हैं, प्राण भी हमें चलता हुआ प्रतीत होता है, नेत्रों के द्वारा हम ज्योति आदि का भी देखते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये तेज और जो प्राण हैं, अगर हम इनको माध्यम बना करके इनकी खोज करते हैं, क्योंकि प्राण हमारे से जरा इतना सूक्ष्म सा है कि किसी चीज को स्पर्श करके बतला देता है। सारे शरीर में हमारे स्पर्श में इंद्रिय प्रधान रूप से है। सबसे बड़ी इंद्रिय ये स्पर्शन इंद्रिय है, त्वचा जिसको कहते हैं। ये अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर जैसे मांस की पेशियों के ऊपर होती है, कोई चीज हम मिर्च वाली खाते तो यहां तक जलता हुआ सा चला जाता है, तो उसके स्पर्श के द्वारा ही वह उस तीक्ष्णता की प्रतीति होती है। तो स्पर्शन इंद्रिय भी प्रधान है ज्ञान के लिए। और इसी प्रकार ये नेत्र इंद्रिय भी, तेज भी, प्रकाश भी, ये माध्यम है किसी चीज को बतलाने और जतलाने के लिए। तो इसको गया रई के रूप में कहा है और उसको प्राण के रूप में कहा है। तो प्राण के रूप में कल हृदय से हम आत्मा की या परमात्मा की खोज की बात बतला रहे थे, आज थोड़ा सा प्रकाश ब्रह्मरंध्र के विषय में डालते हैं कि यहाँ रई का स्थान इसको मानना पड़ेगा। प्राण का स्थान हृदय है और रई का स्थान मस्तिष्क है। आप ऐसे बंद करो तो आपको ऐसे दबाने से अंदर प्रकाश के चिरमिरे से चटकनिये से इस तरह उभरने लगते हैं। तो ये जो ज्ञानवाहक नाड़ियां इस डेले के पिछली तरफ आन करके संबंधित हैं, अगर ये ऊपर का ये निकाल दिया जाए जो शीशा दिखाने वाला है, तो इसके मांस की पेशी है पीछे और उसमें ज्ञान वाहक प्रकाश वाहक नाड़ियों का जाल सा बना हुआ है। इस आंख के कोए के पीछे मांस का जो भाग है ये तो ऊपर एक प्रकार से शीशा ही समझो इसको, अगर इसको निकाल दिया जाए तो आंख फिर काम नहीं करती। अब जैसे ये शीशा लगाया हुआ ऑपरेशन कर करके अब ये थोड़ा काम करती है, तो ये शीशे का काम अगर इसको उठा दिया जाए तो इसके पीछे ऐसे 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 नाड़ियों के जाल से उभरे हुए हैं पीछे से ब्रेन से आग करके, तो उनसे प्रकाश आता है और इस शीशे पर निकल करके बाहर चीजों को दिखाने लगता है। जैसे हम आंखें काम नहीं करती तो शीशा ये काम करने लगता है। तो पीछे ये प्रकाश वाहिनी नाड़ियां अगर हम इनको ऐसे बंद कर देते हैं तो फिर ये चाक्षुष प्रकाश तीन प्रकार का ये अग्नि का जिसको हम रई कहते थे, तीन प्रकार की अग्नि रई जो है इस मस्तिष्क के अंदर वर्तमान हुई। ओजस भास्वर और तेजस, ओजस भास्वर और चाक्षुष के रूप में। तो जो चाक्षुष अग्नि है उसने तो नेत्र इंद्रिय के, क्योंकि नेत्र उस अग्नि से ही इस नेत्र इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये रूप को दिखाती है। या अग्नि जो भूत है इस नेत्र इंद्रिय के अंदर वर्तमान हुआ प्रधान रूप से और सात्विक रूप। और दूसरा जो और इस अग्नि का भाग था वो भास्वर के रूप में, ये कुछ रजत प्रधान सा है भास्वर। इसका संबंध मन के साथ में रहता है। भास्वर अग्नि जो है ये मन की गतिविधियों को या मन को आलोक दिखाती है, और ये जो ऊपर एक और ओजस नाम की अग्नि है वो सप्त प्रधान है, भास्वर रजत प्रधान है और एक तरह से चाक्षुष महत्तमय प्रधान हो जाती है। और वैसे चाक्षुष अग्नि में सप्त प्रधानी आई है, परंतु जब हम अग्नि का और विभाग करते हैं, क्योंकि ये तीनों अग्नियां मस्तिष्क का पोषण करती है, भास्व ये ओजस अग्नि जो है ये बुद्धि का तर्पण करती है, बुद्धि को एक प्रकार से आलोक सा देती है, बुद्धि को शक्ति सी देती है या बुद्धि की पोषक सी रहती है ओजस अग्नि जो है। और भास्वर अग्नि जो है ये मन की पोषक रहती है, और क्योंकि ये तीनों ही बुद्धि मन और जो नेत्र इंद्रिय है ये तीनों ही प्रकाश युक्त पदार्थ हैं। इस मस्तिष्क के अंदर ये तीनों जो पदार्थ हैं प्रकाश युक्त है, ये जिसको रई कहते हैं या ये रूपवान है, जैसे सूर्य हो, चंद्रमा हो और नक्षत्र है। आप सूर्य के समान तो ओजस अग्नि को समझें, और जैसे चंद्रमा के समान जो है मन के साथ उसका संबंध है, तो वो उसका भास्वर अग्नि का संबंध उसके साथ में रहता है, और सूर्य का संबंध नेत्र के साथ में है, इसलिए वो जो चाक्षुष अग्नि है वो नेत्र में वर्तमान रहती है। तो इन तीनों अग्नियों को लेकर के आप अपने मस्तिष्क में अध्ययन करें, ब्रह्म विद्या का, अध्यात्म विद्या का। अब कैसे करेंगे उसको बता दो। तो अब आप मोटे रूप से अंदर की भास्वर तो तुम्हें शायद अभी नजर नहीं आएगी, ओजस भी समझ में नहीं आएगी, ये आंख की ज्योति सामने है ये समझ में आ जाएगी। तो आप इसमें से प्रवेश कर करके अंदर को चलें, तो ये जो चाक्षुष अग्नि है इसकी जाति वाली जो इंद्रिय हैं, क्योंकि नेत्रेंद्रिय जो है ये ज्ञानेंद्रियों में है, तो अब इसकी जाति वाली इंद्रिय कौन सी है, जैसे करण भी इसकी जाति की इंद्रिय है जो शब्द को सुनाती है, स्पर्शनेन्द्रिय भी इसकी जाति की इंद्रिय है जो स्पर्श से ज्ञान कराती है, करणेन्द्रिय शब्द के द्वारा ज्ञान कराती है, और स्पर्शनेन्द्रिय स्पर्श छू करके ज्ञान कराती है, और फिर ये जो है चाक्षुष अग्नि ये उसके रूप को बताती, काला, पीला, नीला आदि, सफेद, ये सब जितने प्रकार के रूप होते हैं ये रूप को बतलाती है। फिर रसना इंद्रिय है, वो भी ज्ञानेन्द्रिय है, जितने प्रकार के संसार में रस हैं ये उनको बतला देती है। फिर नासिका इंद्रिय भी साथ में है, जितनी प्रकार की गंध हैं, ये जो गंध है ये पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है जिसको ये नासिका बतलाती है। ये नासिका एक प्रकार से ये गंध इंद्रिय गंध को जो बतलाती है, यह एक प्रकार से स्थूल रूप भी होता है और सूक्ष्म रूप भी होता है। जैसे हम पुष्प लाते हैं, अब पुष्प में दो प्रकार की गंध है, एक तो स्थूल है और एक सूक्ष्म है। तो यहाँ स्थूल वहां से चलते चलते यहाँ तक सूक्ष्म भी हो जाती है, और सूक्ष्म वहां से चलते चलते स्थूल भी हो जाती है। तो ये दोनों इंद्रिय गंध है, गंध का उपभोग दोनों इंद्रिय करती हैं, नासिका की स्थूल नासिका भी और जो सूक्ष्म शरीर की नासिका है, क्योंकि उसको भी साथ में ही भोग मिलना है। हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर वर्तमान है इसको धारण करके ठहरा हुआ है, स्थूल शरीर के साथ उसका भी भोग होता है। हम जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं इनका सूक्ष्म परिणाम हो करके या यहाँ पाचन आदि रस आदि ये बन करके सूक्ष्म विभाग होकर के जो गंध का भाग होता है उसको सूक्ष्म शरीर या ग्रहण करता है। सूक्ष्म शरीर एक प्रकार कहते ना देवता तो वासना के भूखे होते हैं, तो वह वासना जो सूक्ष्म गंध है उसको ही सेवन कर करके सूक्ष्म शरीर रहता है। फूलों के बगीचे में बैठ जाइए, जो गंध उड़ उड़ करके आ रही है, पुष्प के अंदर तो स्थूल गंध वर्तमान है और वहां से निकल करके चलते चलते तुम्हारी नासिका तक वो सूक्ष्म गंध बन जाती है, तन्मात्रा के रूप में हो जाती है। तो उसको ये स्थूल भी ग्रहण कर लेता है और सूक्ष्म भी ग्रहण कर लेता है। तो दोनों शरीर वह इस गंध से पुष्ट होते हैं, गंध से जीवित रहते। इसी प्रकार रस का भी विषय है, तो रसना इंद्रिय का भी जैसे जिह्वा के साथ में, जिह्वा स्थूल है और इसके पृष्ठ भाग में मस्तिष्क में, और दूसरी इंद्रिय है सूक्ष्म शरीर की। क्योंकि अगर हम सूक्ष्म शरीर की इंद्रिय नहीं मानेंगे और उनका यहाँ भोग नहीं मानेंगे, तो इस शरीर के मरण के बाद धर्माधर्म संस्कारों को लेकर के चलने वाली कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रहे। जिन लोगों ने इस शरीर से भिन्न किसी शरीर को अब तक नहीं समझा है, उनकी बात ये समझ में नहीं आई कि इससे भिन्न भी कोई सूक्ष्म शरीर नाम की चीज है या नहीं। परंतु हाँ, वो इस शरीर का मोक्ष मुक्ति आदि तो मानते हैं, पर उनको ये विज्ञान ये फिलॉसफी समझ में नहीं आई कि धर्माधर्म पाप पुण्य आदि जो संस्कार थे, हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, उन संस्कारों को वाहन कर करके वो संस्कार ही जब परमात्मा के यहाँ, हम तो अब फैसला यही कर लेते हैं, मेरा भी ज्ञान तो, मेरी बुद्धि तो अब यही फैसला करने लगी, मेरे लिए तो परमात्मा की जरूरत नहीं मेरे फैसलों के लिए, मुझे तो अब समझ में आ गई अपनी बात, तुम्हें समझाना जरा मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अब ये जो फैसला होता है कर्मों का, अब मेरी बुद्धि तो अपने फैसले आप ही करने लगी, क्योंकि कर्म जो होता है इसका सूक्ष्म अंतिम परिणाम बीज जो होता है वो संस्कार के रूप में ही रहता है, और वो संस्कार स्थूलत भाव को प्राप्त होकर के पदार्थ का रूप धारण कर लेता है। एक प्रकार से ये सारा संसार विश्व है, प्रकृति जो है संस्कारों का ही अंतिम मजमुआ है, जिनको वासनाएं कहते हैं, संस्कार कहते हैं, तो ये सूक्ष्म रूप में जाकर, तो ये गंध का जो ग्रहण करते हैं उड़ करके जो आती है, इस नासिका की भी तृप्ति होती है, ये भी उसका विज्ञान करा देती है, और सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर की नासिका है वो भी ग्रहण करती है। तो इस शरीर को छोड़ करके जब आकाश मंडल में सूक्ष्म शरीर रहता है, इन गंध और रस आदि का चलते चलते भोग करता रहता है, और जब वो यहाँ रहता है इस स्थूल शरीर का जो भोग इकट्ठा होकर के हम संग्रह करके लाते खिलाते, उससे दोनों शरीरों की तृप्ति और तर्पण होता रहता है। चाक्षुष अग्नि है, ये बाहर के पदार्थों को दिखाती है, ये स्पर्शने इंद्रिय है, बाहर से स्पर्श किया ये इसका स्पर्श का ज्ञान करा देगी, ये हाथ का स्पर्श है, लकड़ी का स्पर्श है, फलाना स्पर्श है, अगर मिर्चम डाल देते तो वो यहाँ तक हमें तेज बतलाती है, वहां तक जलता हुआ नाभि तक नीचे तक चला जाता है, और यहाँ तक असर होता है कि टट्टी और पेशाब में भी उसका असर पहुंच जाता है। तो स्पर्शने इंद्रिय जैसे अंदर के पदार्थों को दिखाती है, तो ये चाक्षुष इंद्रिय तुम्हारे क्यों नहीं अंदर के पदार्थों को दिखा देगी? तो इसकी विद्या को तुम्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, जैसे ये बाहर पदार्थों को दिखा रही है ऐसे ये अंदर भी तो दिखा सकती है, जैसे स्पर्शने इंद्रिय अंदर के स्पर्शों को दिखाती है। तो अब इसको आप अंदर को मोड़ दो, अंदर को फैला दो, ब्रह्मरंध्र में इसको प्रसार कर दो इसका, ताकि ब्रह्मरंध्र की रचना, ब्रह्मरंध्र के पदार्थ तुम्हें दिखाने लगे। ये मोटी विद्या तो पहले आ जानी चाहिए कम से कम। तो अब ये जितने अंदर के पदार्थ हैं, जिस प्रकार की रचना ये नस नाड़ियों की, अस्थियों की, मांस पेशियों की, शिराओं की, क्या नाम, रस की और रज की और वीर्य की, और जो कुछ भी यहाँ वर्तमान है शरीर के अंदर, जैसे तुम बाहर डॉक्टर इसे देखते हैं, चीर फाड़ करके देखते हैं, ऐसे ये जो तुम्हारी चाक्षुष अग्नि है, अगर इसको ध्यान की दृष्टि से मधुर सी, कोमल सी, बारीक सी, समता को लिए हुए, हर्ष को लिए हुए, मुस्कुराहट को लिए हुए, आह्लादता को लिए हुए, इसको लेकर के तुम प्रवेश करोगे, तो ये अंदर की रचना को शरीर की प्रत्यक्ष दिखा दे। मधुर रस का सेवन करो, हृदय तक उसकी अनुभूति मधुरता की होती रहती है। आप जरा कभी ध्यान से पी करके देखना कोई मीठी चीज, क्योंकि ये दो ही विज्ञान के सेंटर हैं, तो उसकी मधुर रस की प्रतीति अनुभूति हृदय तक पहुंचती ही प्रतीति होती है। इसी प्रकार आप कोई पुष्प लाओ, गंध सूंघो, उसकी भी प्रतीति हृदय तक जाकर के गंध की होती है। जरा कभी आप ध्यान की दृष्टि से देखना, तो जिस प्रकार ये बाह्य है गोया गंध की प्रतीति हृदय तक जाती है, रस की प्रतीति हृदय तक जाती है, और रूप की प्रतीति क्यों ना तुम्हारी हृदय तक जाएगी, स्पर्श की प्रतीति हृदय तक जाती है, जलन यहाँ तक पहुंच जाती है, तो सारे इंद्रियों के विषयों भोगों की, पदार्थों की अनुभूति हृदय तक पहुंच गई है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हृदय भी विज्ञान का सेंटर है, जो तुम्हें साक्षी रूप से बतलाता है, वह मधुरता की ऊपर की साक्षी यहाँ देता है, रूप की साक्षी यहाँ देता है, रस की साक्षी यहाँ देता है, शब्द की साक्षी भी यहाँ देता है। तो सबकी साक्षी सूक्ष्म रूप से यहाँ आन करके संस्कारों के रूप में अंकित होती है हृदय में, इसलिए हृदय को विज्ञान का सूक्ष्म सेंटर माना गया है, अव्यक्त सा सेंटर माना गया है, एक प्रकार से वासनाओं को संस्कारों को धारण करने वाला सेंटर यह हृदय ही है। परिणाम होते होते हृदय तक सूक्ष्म पहुंच जाता है। अगर कहीं ये परिणाम क्रम समझ में आ जाए तो ये विज्ञान का बड़ा ऊंचा आधार है, और इसी प्रकार ये सारा संसार परिणित होता हुआ समझ में आ जाए तो इसे चाक्षुष विज्ञान को लेकर के चक्षु अब तुम बंद करोगे कि एक प्रकार से अगर कुछ ना आए तो तुम कल्पना ही करना कर लेना अंदर प्रकाश की, या जैसे ऐसे हम दबा करके देखते हैं तो यहाँ आलोक सा बन जाता है किसी प्रकार, इसको ही समझ लेना, और या जो देखने की धाराएं सी आ रही है इसको अंदर को मोड़ देना, प्रकाश की धाराएं सी निकलती हैं किरणों के रूप में, जैसे सूर्य की किरणें आ रही हैं ऐसे अंदर से भी गोया चाक्षुष किरणें निकलती हैं। अगर ये किरणें ना हो तो रूप को ना दिखा सके, तो चाक्षुष अग्नि भी रूप को दिखाती है, बाहर के रूप को भी दिखा देगी अंदर। अब आज इससे काम लेना शुरू करें, अभ्यास के अंदर चाक्षुष अग्नि का अभ्यास करें और चाक्षुष इंद्रिय का अभ्यास करें और इसके विज्ञान को अंदर और बाहर समझने का यत्न करें, समाधि की अवस्था है।